सत्संग के यह वचन हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। सत्संग के वचन
बाणी श्री गुरु अर्जन देव जी की श्री राग महला पंजवा। संत जनों मिल पाई हो, सच्चा नाम समाल, तोसा बंधो जीय का, एथे ओथे नाल।
जो पूर्ण महात्मा होते हैं वे हमें अलग अलग संप्रदायों और मतों के बंधनों में नहीं डालते, उनका ये मकसद नहीं होता। परंतु जब वे महात्मा चले जाते हैं तो हम उनके बाद आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और अलग अलग मजहब बना लेते हैं। अब गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे उस समय तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली केवल दो चीजें हैं, एक सतगुरु और दूसरा नाम। नाम आपके अंदर है और उसका भेद सतगुरु से मिलता है। अगर इन दो चीजों से प्यार नहीं है तो बार बार दुनिया में ठोकरें खाओगे।
गुरपुरे ते पाइए, अपनी नदर निहाल।
नाम चोरों, ठगों, डाकुओं, व्यभिचारियों, हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों, मतलब कि सबके अंदर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। जब तक कोई अंदर जाने वाला महात्मा ना मिले और राह ना बताए, हम अंतर्मुखी होकर नाम हासिल नहीं कर सकते। हमें पता नहीं कि आंखों के द्वारा प्रवेश करना है, कानों के द्वारा करना है या मुंह के द्वारा अंदर जाना है। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हुआ हो मगर उसे पता ना हो, यदि कोई उसे बता दे कि अमुक जगह पर है, वो उसकी हिदायत के अनुसार धन को ढूंढ निकाले तो वो धनवान हो जाएगा।
कर्म परापत तिस होवे, जिसनु होए दयाल।
कहते हैं पूरे गुरु यानी जो महात्मा उच्चतम रूहानी मंजिलों तक पहुंचा हुआ है उससे नाम लेना चाहिए। पूर्ण गुरु की पहचान का ग्रंथ साहिब में जगह जगह पर वर्णन किया गया है। दुनिया में दो किस्म के महात्मा हैं, एक दर्जाते उलवी के, दूसरे दर्जाते सिफली के। वैसे हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी। हमारे मन और आत्मा की बैठक आंखों के पीछे ऊपर की ओर है। आंखों से नीचे छह चक्र हैं जिनमें देवी देवताओं का वास है। जो महात्मा आंखों से नीचे यानी छह चक्रों तक रहे वे दर्जाते सिफली के हैं, और जो महात्मा आंखों से ऊपर रूहानी मंडलों पर जाते हैं वे दर्जाते उलवी के हैं। वे पूर्ण गुरु हैं, वे कामिल मुर्शिद हैं। अब गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि किसी कामिल मुर्शिद की तलाश कर और उससे नाम लेकर उसके अभ्यास में लग जा। अब यहां आकर मन बहुत घबराता है, क्योंकि बादशाहत मिलनी मुश्किल नहीं, दुनिया की दौलत मिलना मुश्किल नहीं, पुत्र आदि मिलने मुश्किल नहीं, परंतु पूर्ण गुरु का मिलना मुश्किल है। यदि कोई मिल भी जाए तो हमें उसकी पहचान नहीं। अलग अलग मजहब, अलग अलग पार्टियां होने के कारण शोर मच गया। अब कहते हैं कि यदि मालिक दया करे तो हमें पूर्ण गुरु मिल जाए और हम उससे नाम लेकर कमाई करें, ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, फैसला हो जाए।
मेरे मन गुरजे वड अवर न कोए, दूजा थाओ ना को सुझे, गुर मेले सच सोए।
अब गुरु अर्जुन देव जी अपने निजी अनुभव के आधार पर सारी दुनिया को होका देते हुए कहते हैं कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में हमारा कोई मददगार नहीं। गुरु के सिवाय खंडों ब्रह्मांडों पर हमें कोई नहीं ले जा सकता, बस गुरु के बराबर गुरु ही है। यही वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव कहते हैं। जिक्र है कि जब सुखदेव अपने पिता वेद व्यास की बार बार दी गई प्रेरणा और अपने अनुभव के आधार पर राजा जनक को गुरु धारण करके, बल्कि उनसे आत्मिक ज्ञान प्राप्त करके वापस आया, तो वेद व्यास ने पूछा कि गुरु धारण किया? कहता है कि हां किया। वेद व्यास ने कहा कि गुरु किसके जैसा है? कहता है कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। तब वेद व्यास जी ने कहा कि गुरु सूरज के जैसा है? कहता है कि रोशनी तो सूरज जैसी है, मगर सूरज में तपिश है, गुरु में तपिश नहीं। वेदव्यास ने फिर कहा कि गुरु चंद्रमा जैसा है? कहता है कि शीतल तो चंद्रमा के समान है, मगर चंद्रमा में काला दाग है, गुरु बेदाग है। आखिर में वेदव्यास ने कहा कि फिर तू खुद ही बता। कहता है कि गुरु गुरु ही है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। मगर ये कब होता है? जब अंदर पर्दा खुल गया। हमारा गुरु के साथ नाता क्या है? कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए और फिर हम जन्म मरण में ना आए। यदि हम इस मकसद से गुरु के पास जाएं तो हमारा जाना मुबारक है। इसके विपरीत अगर मैं आप लोगों को चिट्ठियां बताऊं जो कि रोजाना डाक में आती हैं, तो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। कई बीबियां लिखती हैं कि जब हम डेरे से होकर वापस घर जाती हैं तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि गुरु के पास गई थी, पुत्र लेकर आई है। इस तरह की कई चिट्ठियां आती हैं। सो ऐसे लोगों को गुरु की क्या जरूरत है? यह दौलत या हालत दुनियादारों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेमियों के लिए हैं।
सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, से वड भागी माए।
जिन पुरुषों का संतों के चरणों से प्रेम हो गया, जिनके अंदर संतों के चरणों का नूर प्रकट हो गया, जिन्होंने पर्दा खोलकर अंदर गुरु का साक्षात्कार कर लिया, उनको सारी दुनिया मिल गई। अगर संसार में कोई भाग्यशाली हैं तो वे हैं।
गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लये तराए।
कहते हैं कि सारा संसार मंगता है और गुरु दाता है। सवाल पैदा हुआ कि गुरु कौन सी दात देता है। वह खुद मालिक के घर पहुंचा हुआ है और नाम देकर हमें भी मालिक के घर ले जाता है। फिर जो गुरु की दात है वह कभी नष्ट नहीं होती, वो ना आग में जलती है ना पानी में गलती है। उसको ना चोर चुरा सकते हैं ना ही यमदूत छीन सकते हैं। अब कहते हैं कि गुरु मनुष्य नहीं होता, हां मनुष्य के रूप में अवश्य होता है। जिस प्रकार बहरूपियों के लड़के स्वांग भरकर आते हैं, अपना पाठ अदा करते हैं और चले जाते हैं, इसी प्रकार सत्पुरुष मनुष्य का स्वांग बनाकर आता है और जिस जिस को नाम देना होता है नाम देकर अपने असली स्वरूप में चला जाता है। गुरु आप सबके अंदर है, यदि हम अंतर में उसके दर्शन कर लें तो हमारा काम बन जाए। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही सतनाम है, यानी सब कुछ गुरु ही है। अगर दुनिया में कोई हमारा मालिक के साथ मिलाप कराने वाला है तो वो गुरु ही है।
कित मुख गुरु सलाहिए, करण कारण समराथ, से मथे निह चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ।
अब कहते हैं कि वह शक्ति जो कुल मालिक है देह धारण करके संसार में आई है, सो वह मालिक मनुष्य बनकर दुनिया में आया, उसकी महिमा करें। उसकी महिमा हो ही नहीं सकती। हां जिस मनुष्य के मस्तक के ऊपर उसका हाथ हो वो सीधा परमात्मा के घर जाएगा। उसको ना यमदूत रोक सकते हैं ना धर्मराय रोक सकता है। ऐसे मस्तक मुबारक हैं जिनके सिर पर गुरु ने हाथ रख दिया। जिनको गुरु ने अपना बना लिया समझो वे मुक्त हो गए। उनकी आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा हो गई। लेकिन यहां एक मुश्किल है। जब ऐसे मौके आते हैं और गुरु इम्तिहान लेता है तो जीव गिर जाते हैं, या यूं कह दो कि जब सारे संसार की मक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं तो संत उन्हें झाड़कर हटा देते हैं। कबीर साहब के जमाने का जिक्र है। राजा बीर सिंह उनका सत्संगी शिष्य था। जब भी कबीर साहब उसके पास जाते थे वो सिंहासन छोड़कर नीचे आ जाता था और उनको सिंहासन पर बिठाता था। एक दिन कबीर साहब को ख्याल आया कि देखना चाहिए कि ये लोक दिखावा करता है या अंदर भी कुछ विश्वास है। बीर सिंह बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। पंडित और मौलवी दोनों उसके पक्ष में थे। कबीर साहब ने क्या किया, एक तरफ रविदास जी को लिया और दूसरी तरफ एक वेश्या को। दोनों हाथों में दो बोतलें गंगा जल की ले लीं। इस तरह मतवाले की तरह चलते और शब्द पढ़ते हुए राजा के दरबार की ओर चल पड़े। लोगों ने देखा तो कहने लगे कि आज कबीर साहब की मति मारी गई है, हाथ में शराब है, मस्ती में जा रहे हैं। एक तरफ वेश्या है, दूसरी तरफ जूते गांठने वाले को लिया हुआ है। इस तरह उलाहना देते हुए और मस्खरी करते बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और पीछे पीछे चलने लगे। जब राजा बीर सिंह के दरबार में पहुंचे तो उसने पूछा, ये शोरगुल कैसा है? लोगों ने कहा कि आज कबीर साहब ने शराब पी है, साथ में एक ओर जूते गांठने वाला है और दूसरी ओर वेश्या है। राजा ने कहा कि ये बात तो अनुचित है। उसका विश्वास डोल गया। जब कबीर साहब सामने आए तो वो सिंहासन से नहीं उठा। कबीर साहब साथियों सहित शब्द पढ़ रहे थे, समझ गए कि ये इम्तिहान में फेल हो गया है, मगर अब उसे उठाना भी जरूरी था। फिर क्या किया, उन्होंने गंगा जल की दोनों बोतलें अपने पांवों पर उड़ेल ली। राजा ने देखा और विचार किया कि शराब पीने वाला चाहे कत्ल क्यों ना हो जाए लेकिन अपने हाथ से कभी भी शराब नहीं गिराता। दूसरा, शराब में दुर्गंध होती है, मगर इसमें से दुर्गंध नहीं आई। समझ गया कि कोई कौतुक है। चुपचाप सिंहासन से नीचे उतर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, ये क्या मौज है। कबीर साहब तो चुप रहे, लेकिन रविदास जी ने कहा कि तू अंधा है, देखता नहीं कि जगन्नाथ जी के मंदिर को आग लगी हुई है और कबीर साहब बुझा रहे हैं। राजा हैरान हो गया। फिर ख्याल आया कि इस बात की भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। खैर, वो रात तो बीर सिंह ने ज्यों त्यों काट ली। सुबह होने पर सिकंदर लोदी के दरबार में अपना आदमी भेजा कि कल कबीर साहब ने यह चलित्तर यानी स्वांग किया है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तुरंत ही दूत भेजा। जब वह सांडनी पर सवार होकर वहां पहुंचा तो पता चला कि कल ठीक उसी समय जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई थी और कबीर साहब वहां पर थे और आग बुझा रहे थे। जब यह खबर राजा बीर सिंह को बादशाह से मिली तो उसकी आंखें खुलीं और पूरी तसल्ली हो गई। इसी तरह और कई इम्तिहान में फेल हो गए। हजरत ईसा भी यही कहते हैं कि महात्मा अपने सेवकों का इम्तिहान ना ले, और हम भी यही कहते हैं।
गोरे अमृत नाम प्यालिया, जन्म मरण का पाथ, गुर परमेश्वर सेवया, पै पंजन दुख लाथ।
कहते हैं कि गुरु हमारे साथ क्या सुलूक करता है। फिर खुद ही उत्तर देते हैं कि गुरु वह अमृत रूपी नाम जो हम सभी के अंदर है हमें पिलाता है, जिसे पीकर हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। फिर गुरु खुद भी मालिक की भक्ति करता है और हमसे भी करवाता है। गुरु कहता है कि मैं भी उसका बंदा हूं और तुम भी उसी के बंदे हो। मैं वहां जाता हूं, तुम भी वहां चलो। हम गुरु की सेवा करते हैं और गुरु आगे परमेश्वर की सेवा करता है। गुरु हमें सचखंड ले जाता है, परमेश्वर के साथ मिलाप करा देता है, परमेश्वर रूप कर देता है। अगर कहीं सच्ची नम्रता, भाव भक्ति और इंसानियत है तो सतगुरु में है। वे हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं। संतों की नम्रता और दीनता बड़ी गुप्त और राज वाली बात है, मगर यहां दुनिया भूल करती है।
सतगुरु गहर गंभीर है, सुख सागर अधखंड, जिन गुर सेवया आपना, जमदूत ना लागे डंड।
सतगुरु नाम का दाता है, सब सुखों का देने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है। कहते हैं यदि ऐसा सतगुरु मिल जाए और वह नाम दे दे और हम नाम की कमाई करें तो फिर हमें धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता। सतगुरु अमृत का सागर है, सुखों का समुद्र है। ऐसा समुद्र है कि जिसमें नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
गुर नाल तुलना लगई, खोज डिठा ब्रह्मंड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन मह मन।
कहते हैं, हमने सारा ब्रह्मांड खोज कर देखा और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सतगुरु जैसा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, सतगुरु के बराबर हमारा और कोई मददगार नहीं, क्योंकि उसने नाम देकर हमारा मालिक के साथ मिलाप करा दिया। इसलिए हम संसार में गुरु के बराबर किसी को नहीं मानते। अब कहते हैं कि गुरु ने नाम का खजाना दिया, हम सुखी हो गए और जन्म मरण से मुक्त हो गए। हमारी आत्मा रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। सत्संग के बीच में एक सिख पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हुजूर, हम वाणी पर विचार नहीं करते, यदि विचार करके उसके पीछे चलें तो वह कोई शक नहीं रहने देती। महाराज जी ने फरमाया, वाणी के असली मतलब को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं ये कहूंगा कि ये जो गुरु नानक देव जी, शम्स तबरेज, मौलाना रूम और अन्य फकीरों की शिक्षा है कि अंदर खंड ब्रह्मांड हैं, अंदर मालिक से मिलने का रास्ता है, ये किसी आदमी की बनाई हुई नहीं बल्कि परमात्मा की बनाई हुई है, नेचुरल साइंस, रब्बी ज्ञान है। हम इसको ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं और ना ही इसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं। हमारी ड्यूटी या फर्ज तो इसके जरिए अंदर जाना है। मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे और साधुओं से मेल मिलाप रखते थे। वे जिस साधु के पास जाते मुझे साथ ले जाते। मैं जितने समय उनके साथ रहा साधुओं से मिलता रहा। इस तरह थोड़े समय में ही मेरा साधुओं से मिलने का शौक बढ़ता गया। जब आजाद यानी बड़ा हुआ तो यह शौक और बढ़ गया। इसमें शक नहीं कि यह रूहानियत प्रैक्टिकल नॉलेज है, अमली ज्ञान है। एक समय था जब मैं खुद कहता था कि गुरु की क्या जरूरत है। मैं अपनी पहली जिंदगी में किसी सभा का प्रेसिडेंट रहा, किसी का सेक्रेटरी, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, मगर जब सोझी पड़ी तो गुरु ढूंढना पड़ा। जब मैं ग्रंथ साहिब पढ़ता तो उसमें बार बार आता कि जाओ किसी गुरु के पास। अब जाना पड़ा, इसीलिए मैं गुरु की तलाश में हर एक समाज में गया। अगर नीची से नीची जाति में भी किसी महात्मा का पता लगा तो वहां भी गया। बाग में फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं। कई महात्मा मिले, बातचीत हुई, मगर वे देते कुछ नहीं थे। फिर भी मैं कहीं से भी निंदा का ख्याल लेकर नहीं आया। आखिर में जब मेरी बदली पेशावर में हुई, वहां एक फकीर देखा, उसने लंगोटी बांधी हुई थी और मस्त होकर बैठा था। कई महीने तक लगातार उसकी सोहबत की। वो कई बार मेरे पास आकर महीना महीना भर रहा, मगर उसने दिया दिलाया कुछ नहीं। हार कर एक रोज रात को मैंने उसको घेर लिया और कहा कि आज तो सच सच बता दो। कहता है, अगर सच पूछना है तो ये है कि अभी तेरा समय नहीं आया। मैंने कहा कि समय आएगा? कहता है कि हाँ आएगा। मैंने कहा कि बताओ वो कौन सा महात्मा है? कहने लगा कि वो खुद ही तेरे पास आ जाएगा। जब मैं बदली होकर कोहमरी पहाड़ पर आया तो बाबा जी महाराज भी वहां आ गए। उस वक्त उनके साथ बीबी रुक्को थी। उससे कहने लगे कि हम इस सिख के लिए आए हैं। उसने कहा कि इसने तो आपको फतेह भी नहीं बुलाई। बाबा जी ने कहा कि इस बेचारे को क्या खबर, परसों ये हमारे पास आएगा। बाबा जी महाराज उन दिनों बाबू सुखदयाल के चौबारे में ठहरे हुए थे और ग्रंथ साहब में से सत्संग करते थे। दो दिन के बाद मुझसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम संतों महात्माओं से मेल मिलाप रखते हो, आओ आज तुम्हें एक महात्मा के दर्शन कराएं। वो मुझे बाबा जी के पास ले गया। मैं कई दिनों तक उनकी सोहबत में रहा। मैं सवाल करता गया और वे जवाब देते गए। जो मेरी 20 साल की शंकाएं थीं वो 4 दिन में खत्म हो गईं। मैंने कहा कि नाम दे दो, लेकिन राधा स्वामी नाम ना दो, ये नया सा लफ्ज मेरे दिल के अंदर ना डालो। तब बाबा जी ने कहा कि कोई वाणी तेरे नित नेम में है? मैंने कहा कि जपजी साहेब और जाप साहेब मेरे नित नेम में हैं। कहने लगे कि जाप साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने मालिक के कितने नए नाम रखे हैं? मैंने कहा कि गिने तो नहीं, मगर मेरे ख्याल से कोई 1200-1400 नाम होंगे। तो कहने लगे कि अगर एक महात्मा ने परमात्मा का एक नाम राधा स्वामी रख दिया तो क्या जुल्म हो गया। वहां स्वामी जी की पोथी राधा स्वामी सार बचन नज्म रखी हुई थी। एक मजमून निकालकर दिखा दिया, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। मैंने कहा कि सुरत शब्द का मार्ग सारे ग्रंथ साहिब का है और वही स्वामी जी कह रहे हैं। यहां राधा का मतलब रूह से है और स्वामी का मतलब मालिक है। मेरी तसल्ली हो गई। फिर जो दात बख्शनी थी मुझे बख्श दी। मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास गया था। मेरी जो शंकाएं थीं उन्होंने दूर कर दी। सो बिना गुरु के वाणी की समझ ही नहीं आती।
गुर नाल तुलना लगई, खोज डिठा ब्रह्मंड, नाम निधान सत गुर दिया, सुख नानक मन मह मंड।